दिन भर तारीख 6 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के शिविर पर हमला। सेना की कार्रवाई में 3 चरमपंथियों की मौत।
लिविंग शेल्टर है जिसमें हमारे जवान रेस्ट कर रहे थे, उस पे फायर किया। हमारे सेंटियों ने इनके ऊपर फायर डाला, ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया।
लोधा समिति की सिफारिशों को लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लगाई फटकार। अखिलेश यादव के विरोध के बावजूद आखिरकार कौमी एकता दल का विलय हुआ समाजवादी पार्टी में।
मुख्तार अंसारी का पार्टी में स्थान है कि नहीं, इस पे मेरे पास अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया है तो हम सभी के लिए स्वीकार रहे हैं।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के कैंप पर गुरुवार तड़के हुए हमले में 3 संदिग्ध चरमपंथियों की मौत हो गई। ये सेना के शिविर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सेना के प्रवक्ता का कहना था कि ये तीनों हथियारों से लैस थे और सेना की वर्दी में थे। उड़ी में सेना के कैंप पर 18 सितंबर को हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही भारत प्रशासित कश्मीर में सेना के कैंप का ये दूसरा हमला है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने कहा है कि विद्रोहियों के कब्जे वाला पूर्वी अलप्पो हजारों लोगों की मौत के साथ आने वाले 2 महीनों में पूरी तरह तबाह हो सकता है। राजदूत स्टाफन डी मिस्टूरा ने पत्रकारों से कहा कि वो शहर के बाहर अलकायदा के जिहादियों से व्यक्तिगत तौर पर मिलने को तैयार हैं अगर वो लड़ाई बंद कर दें। उन्होंने रूस और सीरिया से अपील की है कि चरमपंथियों के खात्मे के लिए वो शहर को तबाह ना करें। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 270,000 लोग पूर्वी अलप्पो के युद्धग्रस्त इलाके में फंसे हुए हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत स्टाफन डी मिस्टूरा ने कहा, सच्चाई सामने है। अगर ये इसी तरह इसी दर से जारी रहा और कोई समीकरण बदलने वाला नहीं होता है तो सेना का पूर्वी अलप्पो में लगातार क्रूर इस्तेमाल होगा और बमबारी, लड़ाई और विनाश जारी रहेगा। कुल मिलाकर अधिकतम 2 से 2.5 महीने में पूर्वी अलप्पो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। हजारों सीरियाई नागरिक मारे जाएंगे, हजारों घायल होंगे और हजारों शरणार्थी बन जाएंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्लोरिडा के निवासियों को चेतावनी दी गई है कि हैती और बहामास में तबाही मचा चुका मैथ्यू तूफान सीधे हमला कर सकता है। राज्य के गवर्नर का कहना है कि नुकसान विनाशकारी हो सकता है। लोगों को बाहर निकालने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मैथ्यू तूफान 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। इसने कैरेबिया में भारी तबाही मचाई। सबसे ज्यादा नुकसान हैती में हुआ। हैती में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को स्थापित होना पड़ा। पोलैंड की संसद के निचले सदन ने गर्भपात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के नागरिक बिल को खारिज कर दिया है। इसमें गर्भपात करवाने वाली महिला को जेल की सजा का प्रावधान था। सरकार का कहना है कि बिल के विरोध में हजारों महिलाओं के प्रदर्शन ने उन्हें इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरे यूरोप में गर्भपात के खिलाफ सबसे सख्त कानून पोलैंड में ही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेश को अगले महासचिव की भूमिका के लिए बेहतरीन बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की मंजूरी हासिल करने के बाद गुटेरेश को बान की मून की जगह लेने के लिए सबकी पसंद बनकर उभरे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से कर रहे हैं। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आज तड़के सेना के शिविर पर हमला हुआ, जिसके बाद हुई कार्रवाई में 3 संदिग्ध चरमपंथी मारे गए। भारतीय सेना का दावा है कि इन चरमपंथियों से उन्हें 3 हथियार बरामद हुए हैं। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजीव सहारन ने मीडिया से कहा,
हमारी लंगेट आर्मी कैंप की पेरीमीटर फेंसिंग के पास देखे गए, जिनके पास हथियार थे। हमारे जो सेंट्री वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जैसे ही इन टेररिस्ट को देखा, इनको चैलेंज किया। चैलेंज करते ही इन तीनों टेररिस्ट ने हमारे जो जवानों के लिविंग शेल्टर है जिसमें हमारे जवान रेस्ट कर रहे थे, उस पे फायर किया। हमारे सेंट्रियों ने इनके ऊपर फायर डाला, इल्यूमिनेशन राउंड द्वारा उस इलाके को इल्यूमिनेट किया और ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया।
ऑफिसर कमांडिंग कर्नल राजीव सहारन मीडिया को जानकारी दे रहे थे। इस बीच भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने बुधवार को सुंदरबनी और मेंढर सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने इसका कड़ाई से जवाब दिया। और जानकारी के लिए, अब से कुछ देर पहले मैंने बात की श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से।
जी, ये कुपवाड़ा जिले में हुआ है। एक्चुअली उड़ी अटैक जो है वो तो बारामूला जिले में हुआ है और उसका बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा। वहां पे आर्मी का कहना है, क्योंकि उसमें तो कोई पुष्टि नहीं हो सकती है किसी तरह से, क्योंकि वो फार ऑफ प्लेस पे कैंप है, वहां पे आर्मी का कहना है कि अंधेरे में मिलिटेंट्स ने फायरिंग की कैंप पे और उसके बाद वो भाग गए। और उसके बाद एक तलाशी अभियान किया गया जिसमें एनकाउंटर हुआ और आर्मी प्रवक्ता ने बताया कि उस एनकाउंटर में 3 चरमपंथी जो है मारे गए, उनकी शनाख्त अभी तक नहीं बताई गई है।
ये तो हमले से जुड़ी हुई जानकारी हुई, लेकिन इस बीच कश्मीर में आज भी धरने प्रदर्शन कुछ हुए हैं।
अच्छी धरने प्रदर्शन तो होते हैं छुटपुट इलाकों में, लेकिन इस बीच में एक बात ये हो गई है कि प्रशासन ने एक न्यूज़पेपर जो अंग्रेजी जबान का न्यूज़पेपर है कश्मीर रीडर, उस पर बैन लगा दिया है। और उस बैन का कोई काज या रीजन नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि ये खबरें जो छाप रहे थे इस अखबार में, उन खबरों से जो है वायलेंस भड़क सकता था। तो उस पे यहाँ के सभी पत्रकारों ने, जितने भी यहाँ पत्रकार हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं, उन्होंने मार्च किया और पैदल मार्च करते हुए वो सेक्रेटेरिएट की तरफ चले गए और वो यहाँ की मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इस बैन को उठाया जाए।
मतलब जो पत्रकार हैं वो इस अखबार पर जो प्रतिबंध लगा है उसको हटाना चाहते हैं।
जी बिल्कुल, इस अखबार के साथ सॉलिडेरिटी का जो है प्रदर्शन किया गया। और मेरी बात भी हुई नईम अख्तर साहब से, जो प्रवक्ता है गवर्नमेंट के और मिनिस्टर भी हैं। उनका कहना है कि ऐसी शिकायतें बहुत पहले से आ रही थी कि इस समाचार पत्र में जो भी कुछ छपता है उससे लोगों में जो है भावनाएं भड़कती हैं और उससे वायलेंस का खतरा है।
बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर श्रीनगर से जानकारी दे रहे थे। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आगरा में कहा कि नियंत्रण रेखा के पार हुए सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पर्रिकर ने इस अभियान को 100% सटीक सर्जिकल स्ट्राइक बताया।
100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक, मुझे लगता है बहुत कम समय पूरे दुनिया ने देखा होगा। बड़े बड़े देशों का भी जब सर्जिकल स्ट्राइक का मायना होता है उसमें उनको इतना सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं होता है। मैं दूसरी चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि कई ऐसे तत्व होते हैं जो इस देश के प्रति अपनी वफादारी बराबर नहीं रखते, तो हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। रुख भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का करते हैं, जहां की नेशनल असेंबली की विदेश मामलों की एक समिति ने सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद ने हाफिज सईद समेत सभी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को, जैसा कि आप जानते हैं, 2008 में मुंबई में हुए चरमपंथी हमलों का मास्टर माइंड मानता है। और जानकारी के लिए, अब से कुछ देर पहले मैंने बात की बीबीसी उर्दू संवाददाता शहजाद मलिक से और पूछा कि किन लोगों को नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ, किन लोगों ने ये मांग की है।
देखिए, आज जो फॉरेन अफेयर्स से मुतल्लिक जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उनके एक रुकन है राणा मोहम्मद अफजल, उन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि मसला कश्मीर को लेकर जब वो पूरी दुनिया को बताने के लिए फ्रांस गए तो वहां पर इस तरह का जाहिर ऐसे हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान ने कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को पनाह दी हुई है या बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में चला गया है। और इस दौरान उन्होंने जमात दावा के अमीर हाफिज सईद का भी जिक्र किया, जिसके बारे में फिर रूलिंग पार्टी के रूप में पार्लियामेंट है, उनका ये कहना था कि ऐसे लोग जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में है या दुनिया जो है को कुछ अपने कंसर्न दे रही है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके तो वो जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से, ऐसे अफराद की वजह से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में ना सिर्फ आइसोलेशन में जा रहा है, बल्कि जो भी कोई वाकया कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं भी होती है तो पाकिस्तान को भी शक की नजर से देखा जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे अनासर हैं, उनको इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेट ना हो।
ये तो बात सिर्फ एक व्यक्ति की है, लेकिन इस पे आम राय क्या है, मतलब क्या कुछ और लोगों ने भी इसकी बात का समर्थन किया?
जी बिल्कुल, जो कश्मीर मुद्दे को लेकर जो जॉइंट सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का पाकिस्तान में, उसमें जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेट में जो उनके जो अपोजिशन लीडर हैं चौधरी एतजाज अहसन, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में हैं कि लोगों की बल्कि पूरी दुनिया की जो कंसर्न्स हैं वो इससे मुतल्लिक हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये कहा कि ये ऐसे लोगों से मुतल्लिक या नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में जो हमारा टेररिज्म के बारे में जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें भी खास तौर पर ये कहा गया है कि इन अफराद के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उनका ये भी एतजाज हसन का ये भी कहना था कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऐसे लोगों से जान छुड़ाई जाए वरना दुनिया भर में पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह जाएगा और इसका इल्ज़ाम जो है वो जो रूलिंग पार्टी है उस पर आएगा, इसलिए इस मामले को, इस मुद्दे को फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है।
सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद ने हाफिज सईद समेत सभी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस्लामाबाद से बीबीसी उर्दू संवाददाता शहजाद मलिक जानकारी दे रहे थे। और अब आपको बताते हैं कि कल बीबीसी इंडिया बोल का विषय क्या है।
बीबीसी इंडिया बोल।
पिछले दिनों भारत पाकिस्तान तनाव के चलते भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध। मुल्कों की दुश्मनी में क्या कलाकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए? क्या कला को भी राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए? इस शनिवार 8 अक्टूबर बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1802-7001 पर शाम 7:30 बजे।
बीबीसी इंडिया बोल।
और आइए अब भारत का रुख करते हैं। भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था बीसीसीआई के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बीसीसीआई ने लोधा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया तो इस बारे में कल यानी कि शुक्रवार को वो कोई फैसला सुनाएगी। विनीत खरे की ये रिपोर्ट।
बीसीसीआई के लिए जैसे करो या मरो की स्थिति है। दरअसल आईपीएल में कथित भ्रष्टाचार और बेटिंग के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में मुकुल मुद्गल के नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया था। इसका काम था आईपीएल और बीसीसीआई में कथित अनियमितताओं की जांच करना। समिति ने कई लोगों को दोषी पाया। जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोधा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। समिति का काम था मुद्गल समिति की रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम आया उनकी सजा निर्धारित करना और सुधारों के लिए सिफारिश करना। अदालत में चली लंबी बहसों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा था कि वो लोधा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करे। इन सिफारिशों में यह भी शामिल था कि बीसीसीआई अधिकारियों के पद संभालने की अधिकतम सीमा निर्धारित हो। सिफारिशों में एक व्यक्ति एक पोस्ट हर राज्य को बराबर वोट देने की बात भी कही गई थी, लेकिन बीसीसीआई ने इन सिफारिशों पर अपनी नाखुशी जताई थी। लोधा पैनल ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए समय सीमा निर्धारित की, लेकिन बीसीसीआई ने अपने तर्क दिए और सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। लोधा समिति सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीसीसीआई ने उसके आदेश का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीसीसीआई खुद को कानून से ऊपर समझता है तो वो गलत है। बीसीसीआई का कहना है कि वो तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत संचालित होता है और मात्र रजिस्ट्रार ही बीसीसीआई के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। राज्य इकाइयों को करोड़ों रुपए देने की बीसीसीआई के फैसले पर भी लोधा समिति ने आपत्ति जताई। आखिर ये पूरा मामला किधर जा रहा है? वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन।
मेरा मानना यह कि ये जो मुद्दा है बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, क्राइसिस पॉइंट पे आ गया है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। अगर आप एक डेढ़ साल से देख ले, जब से पहले रिफॉर्म्स जो प्रपोजल थे वो रिफॉर्म्स प्रपोजल थे, अब जस्टिस लोधा का ये कहना है कि ये प्रपोजल नहीं रहे, ये तो डेडलाइन आपने मिस कर दिया, तो एक तरह से ऑर्डर बन गया है। और एक रिव्यू पिटीशन जो बीसीसीआई ने फाइल किया था उसमें अब बीसीसीआई ने ये कह दिया है कि भाई हम पूरे प्रपोजल इन टोटो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे स्टेट एसोसिएशन जो है वो बगावत कर लेंगे और जो बीसीसीआई जिस तरह से हम जानते हैं वो बीसीसीआई रहेगी नहीं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस लोधा कमेटी का पोजीशन है वो ये है कि हमने आपको बहुत समय दे दिया, आपने कुछ जो है प्रपोजल्स माने हैं, कुछ तो नहीं माने हैं, वो आपको कम्प्लीटली मानना होगा।
बीसीसीआई दुनिया का सबसे धनवान और शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड है और समाज का सबसे प्रभावशाली वर्ग इसके महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। अयाज मेमन।
जम्मू एंड कश्मीर की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसे भी साल के 25-26 करोड़ मिलते हैं बीसीसीआई से, वो काफी पैसा होता है। और अब जो देने वाला आदमी है उसको भी उस पावर का एहसास होता है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ स्टेट एसोसिएशन को।
लोधा समिति और बीसीसीआई अपनी बातों पर कायम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बीसीसीआई के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। अखिलेश यादव के लाख विरोध के बावजूद आखिरकार कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया। पहले भी समाजवादी पार्टी में एक बार कौमी एकता दल का विलय हुआ था, जिसे अखिलेश के तीखे विरोध के चलते रद्द कर दिया गया था। कौमी एकता दल बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रेस में एक बयान दिया कि नेताजी ने विलय का निर्णय किया है और उनके फैसले के बाद कौमी एकता दल सपा में शामिल हो गया। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही से।
कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया और जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी का आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो सभी को स्वीकार है।
लेकिन सवाल ये है कि ये वही कौमी एकता दल है जिससे मुख्तार अंसारी साहब जुड़े हुए हैं और इनकी जो छवि है वो बाहुबली नेता की मानी जाती है। पिछली बार जब ये खबर आई तो अखिलेश यादव जी ने इस विलय को रद्द कर दिया, तो अब ऐसा क्या हो गया कि ये विलय फिर से हो गया?
देखिए, फिर ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय है, उन लोगों ने बैठ के लिया होगा, उन्होंने जो निर्णय लिया है सब प्रोज एंड कॉन्स लेकर ये निर्णय लिया होगा। हमारे लिए अहम चुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार एक स्टैंड लिया था, इस पे स्टैंड ये था कि मुख्तार अंसारी का पार्टी में स्थान है कि नहीं, इस पे मेरे पास अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया है तो हम सभी के लिए स्वीकार है। उन्होंने सब देखे होंगे सारे जो भी कॉर्नर्स हैं या जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं।
आजकल जिस तरह से समाजवादी पार्टी में उठापटक मची हुई है, जो चीजें अखिलेश यादव नहीं करना चाहते थे अब उन्हें शिवपाल यादव कर रहे हैं।
2017 और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर बता सकते हैं। एक पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से ऑफिशियली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि विलय हो गया और मुख्तार अंसारी पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं, इस पे कोई हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। परिवार और पार्टी हम लोग अलग अलग देखते हैं, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी ने सब कुछ देख कर ही लिया होगा।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही कह रहे थे कि ये पार्टी का निर्णय है, आलाकमान का निर्णय है और उन्होंने क्या सोचकर निर्णय लिया वही बता सकते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के बिसहाड़ा गांव में तनाव अभी भी व्याप्त है। अखलाक हत्याकांड के एक अभियुक्त के शव को लेकर गांव वाले पिछले 24 घंटे से बैठे हुए हैं। प्रशासन के साथ साथ लगातार उनकी बात हो रही है, लेकिन उसके अंतिम संस्कार को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
बुधवार देर रात पोस्टमार्टम के बाद रवि का शव जब बिसाहड़ा गांव लाया गया तो वहां मातम पसरा था और लोग गुस्से में थे। रवि के शव को बिसाहड़ा में लोगों ने तिरंगे में लपेटकर फ्रीजर कॉफिन में रख दिया है और अपनी मांगे न माने जाने तक अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हैं। गुरुवार दोपहर बिसाहड़ा गांव पहुंची साध्वी प्राची ने भी ग्रामीणों की इस मांग का समर्थन किया। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी है। जिले के लगभग सभी बड़े अधिकारी बिसाहड़ा गांव में ही कैंप किए हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने वार्ता की ताजा जानकारी दी।
वार्ता चल रही है लोगों से, हमारे ऑफिसर्स उनके कमेटी से वार्ता कर रहे हैं, कई राउंड वार्ताएं चल रही है ना, जब तक फाइनल ना हो जाए। मांगे तो सब पता है मिश्रा जी आपको, मुख्य रूप से तो ज्यादा मुआवजे का और इशू मुझे ज्यादा दिखता है अभी तक जो बात हो रही है। जो लड़के का फादर है उसका इशू तो ज्यादा उसके मौत की इंक्वायरी और संबंधित से है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो ही रही है, मैं अगर कोई वो लोग चाहेंगे सिविल इंक्वायरी तो सिविल इंक्वायरी भी स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर।
बिसाहड़ा गांव में यूं तो रवि की मौत की खबर के बाद से ही भीड़ और तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन कल देर रात उनका शव आने के बाद से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। प्रशासन ने कई जिलों की पुलिस के अलावा पीएसी को भी तैनात कर रखा है और बार बार शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है, लेकिन गाँव वालों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद लोग लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और पुतले फूंक रहे हैं। अखलाक हत्याकांड में गिरफ्तार अभियुक्तों के वकील रामशरण नागर कहते हैं कि प्रशासन लोगों को बिसाहड़ा गांव में जाने से रोक रहा है और पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है।
प्रशासन बाहर के लोगों को वहाँ जाने ही नहीं दे रहा, किसी को भी इवन प्रेस तक को नहीं जाने दे रहा। डेड बॉडी यूं ही गांव के लोगों ने रख रखी है, क्रिमिनेशन कोई हुआ नहीं है, फैसला कोई हुआ नहीं है, सरकार ने कोई मदद की नहीं है। मेन मांग तो ये थी जितना अखलाक को मुआवजा दिया था इतना सरकार हमें भी मुआवजा दे और जो रहेश की उसकी घरवाली विडो है उसको सरकारी नौकरी दे। गौवध अधिनियम का जो मुकदमा है उसमें जान मोहम्मद की गिरफ्तारी हो।
इस बीच खबर है कि इस मामले में लुकसर जेल में बंद अन्य अभियुक्तों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जेल के बाहर भी कुछ हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट थी। अमेरिका में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि समुद्री तूफान मैथ्यू बहामास में तबाही मचाने के बाद फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है और पहले से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। गवर्नर ने चेतावनी दी है कि राज्य भयंकर तबाही का सामना कर सकता है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा अमर शर्मा से।
फ्लोरिडा में लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे तूफान मैथ्यू के सीधे प्रहार के लिए तैयार रहें, क्योंकि हैती के कुछ हिस्सों में विनाश और बहामास में तबाही के बाद तूफान मैथ्यू ने फ्लोरिडा का रुख कर लिया है। फ्लोरिडा में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तूफान मैथ्यू ने कैरिबियन क्षेत्र में काफी तबाही मचाई, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हैती में हुआ है। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में एक रेडियो प्रस्तोता एड लोजामा ने बीबीसी को बताया कि जेरेमी शहर का पूरी तरह से सफाया हो गया है।
आखिरकार जेरेमी से कुछ संदेश मिल पाया है। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित जेरेमी शहर तूफान के आने के बाद दुनिया से काफी हद तक कट गया था। हम जिस स्तर की तबाही देख रहे हैं वो डरावनी है। सरल भाषा में कहें तो समुद्र तट से लेकर बड़ी गिरजाघर तक शहर का सफाया हो गया है। शहर के हालात वास्तव में बहुत खराब हैं।
हैती में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। राहत संस्था ऑक्सफैम के मुताबिक सिर्फ दक्षिण हैती में 10,000 लोग विस्थापित हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता पश्चिमी ग्रैंड एंस प्रायद्वीप को लेकर है, जहां तूफान का प्रकोप सबसे ज्यादा था। वहां सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं और वह सूचनाओं से कट गया है। इस तूफान के कारण हैती में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। पड़ोसी देश डोमिनिक रिपब्लिक में भी 4 लोगों की जान चली गई है। क्यूबा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट का कहना है कि ये तूफान फ्लोरिडा को भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका में अधिकारियों का कहना है कि मैथ्यू तूफान में हवा की गति 205 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जो पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। करीब एक दशक में आए इस सबसे भयंकर तूफान के अमेरिका के तटीय इलाकों में पहुंचने से पहले लाखों लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। फ्लोरिडा में पूर्वी किनारे के वेस्ट पाम बीच से स्थानीय समाचार एजेंसी CBS 12 के पत्रकार इसराइल बालदरियास ने समुद्र तट से बीबीसी से बात की।
The surf here along the beach, you can see it, the swells getting higher, more foam, so you can definitely...
तटों पर लहरें बहुत ऊंची हो गई हैं, झाग की मात्रा भी बढ़ गई है, इसलिए आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि तूफान मैथ्यू फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है।
फ्लोरिडा में राज्यों को जोड़ने वाले हाईवे को वन वे कर दिया गया है, जिससे सिर्फ समुद्र तट के घर खाली कर रहे लोगों को जाने दिया जा रहा है। फ्लोरिडा में पेट्रोल पंप में वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई पेट्रोल पंप में तेल खत्म हो चुका है, यहां तक कि कई राशन की दुकानों में भी सामान खत्म हो गया है।
विनाशकारी तूफान मैथ्यू फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है। और कार्यक्रम में अब वक्त है आपकी भेजी चिट्ठियां सुनने का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ हैं वंदना
जी। मेरा भी नमस्कार। तो शुरू करें पोस्ट कार्ड से।
जी बिल्कुल।
पहला जो पोस्ट कार्ड है मैं इससे थोड़ा विशेष मानूंगी, वो इस मायने में कि ये हमारी एक महिला श्रोता ने लिखा है और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब हमारी किसी महिला श्रोता ने हमें चिट्ठी लिखी थी। हम गुजारिश करते रहते हैं।
वाकई ये बहुत खास सुधा गुप्ता का
जी,
पोस्टकार्ड
तो
है।
ये लिखती हैं कि बीबीसी हिंदी में ये मेरा पहला पत्र है। मेरी शादी को 1.5 साल हुए और अपने पति की प्रेरणा से मैं बीबीसी हिंदी सुनने लगी हूँ। उन्होंने ही मेरा परिचय कराया। मैं दिन भर कार्यक्रम मोबाइल पर डाउनलोड करके सुनती हूँ, लेकिन नमस्कार भारत को मैं डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ। कृपया इसे सही कराएं। और बाकी कार्यक्रमों की भी इन्होंने तारीफ की है, कहा कि बहुत अच्छा लगता है और लाभकारी होते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधा जी, और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम और हमें चिट्ठी भी लिखते रहिए।
इनकी दिक्कत है कि ये नमस्कार भारत डाउनलोड नहीं कर पा रहे।
अगर हमें थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगी कि कौन सा फोन है और किस तरह की दिक्कत हो रही है तो हम शायद मदद कर पाए।
और अगला पोस्टकार्ड है राजन हंस, नरसिंहपुर पलामू झारखंड से, आपके
जी
राज्य से, ये बोल रहे हैं कि 2003 से ही नियमित रूप से सुन रहे हैं और इसी वर्ष शिक्षक बना हूँ।
मतलब 13 साल से बीबीसी सुन रहे थे और अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात
जी। कह रहे हैं कि मोहनलाल शर्मा द्वारा पहले कार्यक्रम आता था करियर क्या करूं, जिसमें मोहनलाल शर्मा ने उस कार्यक्रम में बताया था कभी कि अगर किसी सवाल का जवाब न आता हो जो छात्र पूछ ले तो बिल्कुल मान ले और कहें कि फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है, और कह रहे हैं कि उन्होंने सुना था तो ये अनुभव इनके काम आ रहा है और इस तरह के कार्यक्रम दोबारा शुरू करें।
बहुत शुक्रिया आपका, और ये जानना भी एक बहुत जरूरी चीज है, ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति हर कुछ नहीं जानता और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अपमान माना जाए। हाँ, ये जिस वक्त आप ये मान लेते हैं कि आप नहीं जानते, वहां से ये यात्रा शुरू होती है कि आप उसको जानने समझने की कोशिश शुरू करते हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं मुझे सब मालूम है तो शायद आप कभी न सीख पाए।
जी बिल्कुल। और अब एक ईमेल ले लेते हैं, इनका नाम है गणेश प्रसाद हुजदर, जगह इन्होंने नहीं लिखी है। दुनिया जहां में जो गद्दाफी पर था वो इन्हें काफी पसंद आया। इन्होंने लिखा है कि मधेशी आंदोलन और नाकेबंदी से नेपाल में जो हालत बुरी हुई उस पर भी इन्होंने पढ़ा जो इनको अच्छा लगा
जी।
लेकिन इनका ये कहना है कि नेपाल की राजनीतिक घटनाओं पर ही आप हमेशा समाचार देते हैं, वहाँ जो दूसरी घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी कभी जिक्र किया करें।
बहुत शुक्रिया आपका, हम जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे। नेपाल सांस्कृतिक रूप से भारत से बहुत जुड़ा हुआ देश है और वहाँ के जो पर्व त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं वाकई उन पर हमको चीजें, आपको लगता है कि अगर हम कम सुनवाते हैं तो हमको बढ़ानी चाहिए। अभी नेपाल में बहुत धूमधाम से दशहरा जिसको कहते हैं, दशहरे का त्यौहार 10 दिनों के लिए बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम देखेंगे कि अगर हमें संभव हो तो हम आपको
हमारे नेपाली सेवा के जो सहयोगी
हैं उनसे हम मदद ले सकते हैं और आपके लिए कुछ तैयार कर सकते हैं।
अगला जो ईमेल है वो है विश्वजीत का, इन्होंने लिखा है पूर्णिया बिहार से। ये कहते हैं कि अब मुझे इंडिया बोल कार्यक्रम ठीक नहीं लगता, इसे बंद कर दीजिए। फेसबुक पर कॉमेंट का जवाब ठीक से नहीं दिया जाता और ये कार्यक्रम टीवी जैसे प्रोग्राम की तरह ही होने लगा है, सब हल्ला करते हैं। मैं अब इस कार्यक्रम को नहीं सुनता हूँ, कम से कम फेसबुक पर जवाब दीजिए ताकि हमें पता तो चले कि आप हमारे मेल पढ़ते हैं।
हम यथासंभव सभी मेल पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये जरूरी है बताना, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है हमारे लिए कि हम सभी ईमेल का उत्तर दे सकें। अगर आप हमारे फेसबुक के पन्ने पर जाएं तो कई बार आप देखेंगे कि 3,000-4,000 कमेंट्स एक पोस्ट पे होती हैं और दिन में हम 20 पोस्ट करते हैं, तो ये असंभव है कि हम हर कमेंट का जवाब फेसबुक पर दे सकें। इंडिया बोल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लोग अपनी आवाज़ में अपने सवाल सीधे पूछते हैं और उसका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं, और वो टीवी की तरह शोर ना हो ये तो हमारा हमेशा ही प्रयास होता है और आगे भी रहेगा
जी। और इनका कोई और सुझाव हो कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए तो बिल्कुल
जी बिल्कुल
जरूर भेजिए अगली बार हमें। अगला एक और ईमेल है, ये है अशोक भारत मुजफ्फरपुर
बिहार।
इनका ये कहना है कि रूस अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर प्रस्तुत की गई दिव्य आर्य की रिपोर्ट काफी उपयोगी, रोचक और ज्ञानवर्धक थी, और वहां जो शीत युद्ध जैसी स्थिति बन रही है उसको कम करना सबके हित में है। अच्छी रिपोर्ट के लिए बधाई।
बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए और हमें बताने के लिए। अब हमारा वक्त खत्म हो चला है तो आज आपकी राय में बस इतना ही। अगर आप हमें डाक से पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता वही है, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल भेजना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपने अपनी चुट्टियां सुन ली और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के कैंप पर गुरुवार तड़के हुए हमले में 3 संदिग्ध चरमपंथियों की मौत हो गई, ये सेना के शिविर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने कहा है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो हजारों लोगों की मौत के साथ आने वाले 2 महीनों में पूरी तरह तबाह हो सकता है। फ्लोरिडा के निवासियों को चेतावनी दी गई है कि हैती और बहामाज में तबाही मचा चुका मैथ्यू तूफान सीधे हमला कर सकता है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। 1.5 घंटे बाद यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।